रेगिस्तान में 40 साल भटकने के बाद मूसा की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने यहोशो को उसके उत्तराधिकारी के रूप में चुना। यहोशो एक शक्तिशाली और साहसी नेता था और वो परमेश्वर के लोगों को वादा किए हुए देश में ले गया। न्यायियों की पुस्तक कनान देश पर विजय प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के लोगों की कहानी को आगे बढ़ाती है। 17:11 उद्धारक। अपनी बाइबल में न्यायियों 2 खोले। वॉल स्ट्रीट जर्नल में पुनर्परिभाषित परमेश्वर शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में पत्रकार लीजा मिलर ने परमेश्वर की व्यक्तिगत परिभाषाओं की घटना को संबोधित किया। देश भर में वफादार लोग परमेश्वर को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। एक अधिनायकवादी या पितृवादी देवता की पारंपरिक छवियों से असंतुष्ट लोग अपने आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप ईश्वर की विचित्र व्यक्तिवादी धारणाओं को अपना रहे हैं। वे विभिन्न धार्मिक प्रभावों से आध्यात्मिक जीवन को एक साथ जोड़ रहे हैं, योगा और मनोचिकित्सा के साथ साथ या जो कुछ भी उन्हें आगे बढ़ाता है। लोग इन नए देवताओं की तलाश उसी तरह करते हैं जैसे वे बाजार में नए उत्पादों की तलाश करते हैं। न्यूयॉर्क में यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी के सहायक प्रोफेसर रैंडल स्टेयर्स कहते हैं, यह व्यक्तिवाद का अंतिम रूप है। इसके बाद मिलर ने अमेरिका के केंद्र घर से एक उदाहरण दिया। अगर केन्ज़विगार्ड की बात करें, जो कांसस के ओस्कालूसा में 43 वर्षीय वकील है, एक सख्त लूथरन परिवार में पले बड़े, वह कहते हैं कि वे परमेश्वर की कल्पना संता क्लॉस के रूप में करते थे, जो एक प्रदान करने वाला और न्यायाधीश है। परंतु जैसे जैसे वो समझदार होते गए, मिस्टर ज़विगार्ड गिरजाघर से निराश हो गए और गिरजाघर जाने के बजाय उन्होंने मछली पकड़ने जाने के लिए रविवार की सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। आज उसके लिए परमेश्वर का अर्थ है अकेले, एक झील पर सूर्योदय के समय कोहरे को ऊपर उठते देखना और पानी की घंटी सुनना। जब वो अपने बच्चों को, जो अब 2 और 3 साल के हैं, परमेश्वर के बारे में सिखाता है, मैं उन्हें बाहर ले जाने की योजना बनाता हूं और कहता हूं, यहां है परमेश्वर। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये लेख न्यायियों की पुस्तक को प्राचीन इतिहास की धुन से बाहर निकालकर 21वीं सदी में लाता है। कनान देश पर विजय प्राप्त करने वाली पीढ़ी के मरने के बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। यह बाइबल में सबसे दुखद आयतों में से एक है और यह न्यायियों की पुस्तक के लिए दृश्य तैयार करती है, जो हमें बताती है कि क्या होता है जब एक पीढ़ी परमेश्वर को जाने बिना बड़ी होती है। एक पीढ़ी में ऐसा कैसे हो सकता था? शायद यह सिर्फ इतना था कि माता पिता एक समृद्ध देश में व्यस्त है। इन लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में अद्भुत कार्य करते हुए देखा था, परंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने बच्चों की व्यवस्थित शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया और एक पीढ़ी में ही परमेश्वर का ज्ञान खो गया था। तो यहां न्यायियों में हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी है जो समृद्धि में पैदा हुई थी, जो कि आध्यात्मिक अर्थ की खोज में मोहित थी, परंतु परमेश्वर कौन है नहीं जानती थी या उन्होंने क्या किया है। इज़राइल में यह विपदा हमें हमारी प्राथमिकताओं की याद दिलाता है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि परमेश्वर कौन है और उन्होंने क्या किया है। यह अनिवार्य है और इस ज्ञान के बिना विश्वास असंभव है। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, वे उस पर कैसे विश्वास करें जिसके विषय में उन्होंने कभी नहीं सुना। ये जानना कि परमेश्वर कौन है और उन्होंने क्या किया है हमारे पाठ्यक्रम का मूल होना चाहिए। जब हमारे बच्चे यह जान लेंगे, तब वे विश्वास और आज्ञाकारिता की सार्थक प्रतिक्रिया करने की स्थिति में होंगे। ईश्वर के ज्ञान को खोने में केवल एक पीढ़ी लगी, परंतु जो एक पीढ़ी में खो सकता है उसे दूसरी पीढ़ी में वापस लाया जा सकता है। न्यायियों की पुस्तक घटनाओं के एक चक्र को दर्ज करती है जिसे कई सौ वर्षों की अवधि में कई बार दोहराया गया था। सबसे पहले लोगों ने यहोवा को छोड़ दिया या त्याग दिया और मूर्तियों की ओर मुड़ गए। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। दूसरा, परमेश्वर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने लोगों को उनके शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने यहोवा के क्रोध को उकसाया, इसलिए यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। तीसरा, लोगों ने मदद के लिए परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए एक सैन्य नेता या न्यायाधीश को खड़ा किया। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। चौथा, जब न्यायाधीश की मृत्यु हो गई तो लोग अपने पिछले तरीके पर लौट आए और पूरा चक्र फिर से शुरू हो गया। परमेश्वर के लोग एक चक्र में घूम रहे थे, मूर्ति पूजा, प्रलय, परमेश्वर को पुकारना, छुटकारा और फिर मूर्ति पूजा में वापस आना। जैसा कि आप पुराने नियम में पढ़ते जाएंगे, आप मूर्ति पूजा के विषय पर आते रहेंगे। हालांकि यह बहुत दूर की बात लग सकती है, परंतु सत्य यह है कि क्योंकि यह मुद्दा इतनी बार आता है इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का लेख मूर्ति पूजा की एक उपयोगी परिभाषा प्रदान करता है। लोग परमेश्वर को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वे अपनी स्वयं की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप ईश्वर की विचित्र व्यक्तिवादी धारणाओं को अपना रहे हैं। मूर्ति पूजा शक्तिशाली रूप से आकर्षक है क्योंकि आप उसको काबू करने की स्थिति में होते हैं। मान लीजिए कि आप एक काल्पनिक चरित्र का आविष्कार करते हैं और उसे सोनू पिंटू कहते हैं, जो सोनू और पिंटू का एक प्रकार का मिश्रण है। आप तय करते हैं कि सोनू एक प्रथम अगुवा होगा और आप कंप्यूटर पर बैठकर उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। सोनू हट्टा खट्टा और बलवान है, उसकी काली मूछें है, नहीं रुके, आप इसे मिटाते हैं, उसकी भूरे रंग की मूछें है। आप चट्टान वाले पर्वत पर एक भालू के साथ सोनू की मुठभेड़ का वर्णन करते हैं, परंतु फिर आपको कहानी में थोड़ा रोमांस की आवश्यकता होती है, इसलिए आप सोनू को एक संवेदनशील पक्ष देते हैं। उस कठोर हष्टपुष्ट बाहरी हिस्से के भीतर सोनू अपने पूरे जीवन में सच्चे प्यार की तलाश करता रहा। जैसा कि आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। सोनू आपके काबू में है, आप उसे जो चाहे बना सकते हैं और वो सब कुछ करेगा जो आप उससे कराना चाहते हैं। यह मूर्ति पूजा का आकर्षण है। जीवित परमेश्वर की उपासना करने के बजाय बहुत से लोग एक ऐसा परमेश्वर बनाना पसंद करते हैं जो उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। एक उपन्यास लिखने में एक चरित्र का आविष्कार करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक वास्तविक व्यक्ति के साथ ऐसे करने की कोशिश करने पर आप खुद को चरित्र के अपमान या मानहानि के लिए अदालत में पाएंगे। मूर्ति पूजा शक्तिशाली रूप से आकर्षक है, परंतु ये गंभीर रूप से आक्रामक भी है। परमेश्वर हमारी मूर्ति पूजा का जवाब यह कहकर देते हैं, मैं जो हूं वो हूं, तुम मुझे फिर से परिभाषित नहीं कर सकते, और यदि तुम ऐसा करने की कोशिश करते हो तो मैं अपनी सुरक्षा छीन लूंगा और तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के हाथों में सौंप दूंगा। यदि हम मूर्तियों का अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी पसंद के चुनाव के परिणामों के साथ जीने की अनुमति देते हैं, परंतु परमेश्वर का शुक्र है कि यह कहानी का अंत नहीं है। मूर्तियां आकर्षक हो सकती है क्योंकि हम ही उन्हें आकार देते हैं, परंतु वे शक्तिहीन है क्योंकि वे हमारी अपनी कल्पना के अनुमानों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर के लोगों को उनके शत्रुओं ने रौन डाला तो वे परमेश्वर की ओर फिरे और सहायता के लिए उन्हें पुकारने लगे। परमेश्वर ने न्यायाधीशों को खड़ा किया। यहोवा की आत्मा ओतनील, एहुद, शमगर, दबोरा, बराक, गिदोन और शिमशोन पर आई, जिससे वे परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने में समर्थ हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपने लेख के निष्कर्ष में लीजा मिलर ने लिखा, ये अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और समृद्ध समय है। इसलिए जितने लोग ईश्वर के साथ गहरे संबंधों की खोज करते हैं, वे ऐसे संकटों का सामना नहीं कर रहे हैं जो अक्सर लोगों को ऊपर से सुरक्षा या मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करते हैं। कठिन समय या अचानक कठिनाइयां ये सब जल्दबाजी में बदल सकती है। परमेश्वर के बारे में लोगों की धारणाएं कितने भी व्यापक या दूरदराज की क्यों ना हो, वे पिता परमेश्वर की ओर लौट आते हैं जब चलना कठिन हो जाता है। यह बहुत ही ज्ञान विषयक है। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम न्यायियों की पुस्तक में सीखते हैं। जब चलना कठिन हो जाता है तो प्रश्न बहुत सरल हो जाता है, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो आपकी मदद करने में सक्षम है? जब सवाल यह हो तो मूर्तियां आकर्षक नहीं रहती। वे सुविधाजनक हो सकती है क्योंकि वे नैतिक मांग नहीं करती, परंतु जब आप किसी संकट में होते हो तो यह आपकी अपनी कल्पना की उपज की आवाज पर आपकी मदद कैसे करेगा? जैसा कि आप न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, यह स्पष्ट है कि जहां इन सैन्य नेताओं ने उल्लेखनीय चीजें हासिल की, वहीं उनकी महत्वपूर्ण सीमाएं भी थी। उनमें से अधिकांश में गंभीर रूप से चरित्र की कमी थी। एहूद एक कायर हत्यारा की तरह लगता है। गिदोन में विश्वास की इतनी कमी थी कि उसे इस बात की कई पुष्ट की आवश्यकता थी कि परमेश्वर उसे क्या कराने के लिए कह रहे थे। इफ्ता ने एक विनाशकारी चुनाव किया जिसमें उसकी अपनी बेटी का बलिदान करना शामिल था। शिमशोन की नैतिक असफलताएं पौराणिक है। इस पुस्तक में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आप वास्तव में प्रशंसा कर सके। न्यायियों की पुस्तक को पढ़ना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमें एक बेहतर उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और यीशु वो उद्धारकर्ता है जिसकी हमें आवश्यकता है। यीशु और न्यायियों के बीच का अंतर आश्चर्यजनक है। न्यायियों ने दूसरों की जान लेकर अपनी छाप छोड़ी। यीशु हमारे लिए अपना जीवन देने के लिए आए थे। न्यायियों ने परमेश्वर के लोगों की बाहरी परिस्थितियों को संबोधित किया। यीशु ने उनके दिल पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायाधीशों की उपलब्धियां कुछ समय तक ही थी। यीशु जो छुटकारा लाते हैं वो हमेशा के लिए रहता है। परमेश्वर को उस रूप में परिभाषित करना जिस रूप में आप उसे चाहते हैं केवल आपके जीवन को चक्र में घूमने की ओर ले जाएगा, ठीक न्यायियों की पुस्तक की तरह। यीशु उस चक्र को तोड़ने के लिए आए थे। वे महान उद्धारकर्ता है और वो आपको एक व्यर्थ यात्रा से बचाने में सक्षम है जिसमें आप कभी प्रगति नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताने के द्वारा कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। परमेश्वर को फिर से परिभाषित करना मूर्ति पूजा है। सदियों से लोगों ने जीवित ईश्वर के सामने झुकने के बजाय बार बार अपने स्वयं के देवताओं का आविष्कार करना चुना है। हमारे द्वारा बनाए गए देवता आकर्षक है क्योंकि हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु वे केवल हमारे दिमाग में मौजूद है और हमें पाप, मृत्यु और नरक से बचाने के लिए शक्तिहीन है। केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को संसार में भेजा।